समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी में आपका हार्दिक स्वागत है। आकाशवाणी के न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा में हम आधे घंटे में लेकर आएंगे आपके लिए बहुत सी ऐसी खबरें जिनसे आपका है सरोकार, और इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे। चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ खास है उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर, और हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी याद जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। श्रोताओं, परिक्रमा के इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर, और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी अभिषेक मुखोपाध्याय। अभिषेक, आपको भी मेरा नमस्कार।
हेलो दिव्या, हेलो एंड गुड आफ्टरनून। यू आर ट्यून्ड टू परिक्रमा ऑन 100.1 एफएम। आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय एंड विद मी टुडे इज माय को-होस्ट दिव्या तोमर, एंड फॉर यू वी हैव अ सिलेक्शन ऑफ न्यूज, अ डिस्कशन सेगमेंट, डेटलाइन इंडिया रिपोर्ट्स, कैप्सूल्स, बिजनेस ट्रिब्यूट्स एंड मच मोर। ऑल दीज ओवर द नेक्स्ट 30 मिनट्स। वी बिगिन विद द न्यूज हेडलाइंस फर्स्ट।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्क ब्रिज, चिनाब पुल और उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक पर भारत के पहले केबल आधारित रेल ब्रिज अंजी पुल का उद्घाटन किया।
प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो फ्लैग्स ऑफ वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन्स कनेक्टिंग कटरा एंड श्रीनगर, सेज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन जेएनके आर अ ह्यूज सेलिब्रेशन ऑफ इंडियाज यूनिटी एंड विल पावर।
भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो दर में कमी की, इसे 50 आधार अंक घटाकर 5.5% किया गया।
नीट पीजी 2025 एग्जामिनेशंस टू बी हेल्ड ऑन अगस्त 3rd इन ए सिंगल शिफ्ट।
और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी कारोबारी एलन मस्क के बीच विवाद के कारण टेस्ला के मार्केट कैप में 150 अरब डॉलर की गिरावट, ये एक दिन में सबसे बड़ा नुकसान।
And now, listeners, it's time for a segment, Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or the global level. And today we will talk about JNK inauguration projects. Well, Divya, we have a new era of connectivity and development has dawned upon the land of saints, snow and saffron, Jammu and Kashmir. And today, Prime Minister Narendra Modi has officially declared that from Kashmir to Kanyakumari, the entire nation now stands proudly united through the Indian Railways network.
ओ देश मेरे, तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा।
और अभिषेक, ये इतना बड़ा जो बदलाव हुआ है, इसके केंद्र में दरअसल हैं दो इंजीनियरिंग चमत्कार जो मानवीय महत्वाकांक्षा और भारत की प्रगति को फिर से परिभाषित करते हैं। श्रोताओं, शक्तिशाली चिनाब ब्रिज, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज का उद्घाटन हो गया है। गर्जन करती चिनाब नदी के ऊपर स्टील के इंद्रधनुष की तरह उभरता ये पुल सिर्फ इंजीनियरिंग का कमाल नहीं है, ये भारत की अजेय यात्रा का भी प्रतीक है।
Yes, and say hello to India's first cable state railway bridge, the Anji Khad Bridge. Graceful, futuristic and strong, this bridge represents the dreams of a new Jammu and Kashmir. Both bridges are part of the awe-inspiring Udhampur Srinagar Baramula Rail Link or USBRL project, a 272-kilometer fully electrified route winding through mountains across 943 bridges and inside 36 tunnels. The 272-kilometer USBRL project has been constructed at a cost of around 44,000 crore rupees. And the USBRL project is fully electrified section, a true railway revolution.
आज का ये कार्यक्रम भारत की एकता और भारत की इच्छा शक्ति का विराट उत्सव है। माता वैष्णो देवी के आशीर्वाद से आज वादी कश्मीर भारत के रेल नेटवर्क से जुड़ गई। मां भारती का वर्णन करते हुए हम श्रद्धा भाव से कहते आए हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी, ये अब रेलवे नेटवर्क के लिए भी हकीकत बन गया है।
और ये वो पल था अभिषेक जिसने सबके दिलों को छू लिया, जिस समय प्रधानमंत्री मोदी ने कटरा को श्रीनगर से जोड़ने वाली नई वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। उस समय सभी लोगों ने इसका पूरे तहे दिल से स्वागत किया और अब श्री माता वैष्णो देवी की धरती खूबसूरत कश्मीर घाटी से भारत की सबसे तेज ट्रेन को ट्रेन वहां से रवाना होगी। और लॉन्च से पहले प्रधानमंत्री ने ट्रेन में स्कूली बच्चों और रेलवे के नायकों से बातचीत करने के लिए भी समय निकाला। वाकई में ये हर किसी के दिल को छू लेने वाला लम्हा था और बहुत ही खूबसूरत नजारा था।
उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला, ये रेल लाइन प्रोजेक्ट ये सिर्फ नाम नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के नए सामर्थ्य की पहचान, भारत के नए सामर्थ्य का जयघोष है।
Standing tall in Katra, the Prime Minister said, Jammu and Kashmir is the crown jewel of India. The Chinab and the Anji bridges are not just physical structures, they are gateways to prosperity. And prosperity is coming with development projects worth over 46,000 crore rupees being launched today across the region. From rail to roads, from education to energy, it's not just infrastructure, it's transformation. Yes, and so, dear listeners, from the valleys of Kashmir to the coasts of Kanyakumari, the sound of progress is on track and the train has left the station.
और समय है अब अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है।
As Odisha moves confidently on the path of development, Chief Minister Mohan Charan Majhi has outlined an ambitious vision to make the state a major contributor to India's growth story by 2047. Chief Minister Mohan Charan Majhi said, under the visionary leadership of Prime Minister Narendra Modi, Odisha government is working hard to achieve the goal of Samruddh Odisha by 2036 and Viksit Bharat by 2047. Here's more from a Cuttack correspondent.
Odisha Chief Minister Mohan Charan Majhi has asserted that the state will be a key growth engine in India's journey towards becoming a global economic powerhouse by 2047. Speaking ahead of this government's first anniversary on June 12, Mr. Majhi said the people of Odisha aspire to see the state's economy reach $1.5 trillion in the next 25 years. He said the government is laying the foundation for a Samruddha Odisha 2036, a roadmap for a prosperous and empowered state. The state has set a mid-term target of achieving a $500 billion economy by 2036. The Chief Minister informed that an Odisha vision document prepared with inputs from over 3.2 lakh citizens and analyzed using artificial intelligence will be unveiled on June 12. He described it as a comprehensive, actionable and inclusive blueprint for the state's future. Mr. Majhi expressed gratitude to Prime Minister Narendra Modi for the center support, highlighting 73,000 crore for railway projects, 4,600 crore for national highways and another 17,500 crore worth of upcoming projects. He said the state registered a healthy economic growth rate of 7.2% in the financial year 24-25. The Chief Minister outlined plans to develop world-class infrastructure including roads, railways and air connectivity with central support. He said Odisha will also tap into its vast coastline through port-based special economic zones, integrating with global value chains and creating employment. To boost industry and jobs, Mr. Majhi said the government is focusing on sectors like textiles, garments, food processing and new age industries. He added that the Make in Odisha conclave reaffirmed Odisha's position as a top investment destination in eastern India, drawing 593 proposals worth 16.73 lakh crore with a potential to create nearly least 13 lakh jobs. Highlighting urbanization as a key priority, the chief minister said the state aims to increase urban population from 17% now to 40% by 2036 and 60% by 2047. Plans are underway to develop a 7,000 square kilometer metropolitan region covering Bhubaneswar, Cuttack, Khurda, Jatani, Paradip and Puri, along with similar growth centers across the state. With Tapan Maharana, this is Prutirekha Tarniya from Akashvani, Cuttack.
और अब चलते हैं भोपाल, देश के दिल में एक तरीके से कह सकते हैं, केंद्र में. वहां केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के भूमि संसाधन विभाग, मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम द्वारा संयुक्त रूप से भोपाल में नक्शा वेब जीआईएस प्लेटफॉर्म पर दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया. कार्यशाला का समापन आज हुआ है और जानकारी दे रहे हैं हमारे भोपाल संवाददाता संजीव शर्मा.
भोपाल के भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान में आयोजित इस कार्यशाला का उद्देश्य भू प्रबंधन और प्रशासनिक प्रणाली को पारदर्शी और तकनीकी सक्षम बनाना है. कार्यशाला में 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के राजस्व और नगरीय प्रशासन सचिव, नगर निगम आयुक्त और 120 से अधिक नगरीय निकायों के 200 से अधिक प्रतिभागियों सहित भू प्रबंधन से जुड़े पेशेवरों ने भाग लिया. नक्शा वेब जीआईएस सॉल्यूशन पर आधारित कार्यशाला में इस प्लेटफॉर्म की क्षमताओं का शहरी संपत्ति सर्वेक्षण और भू स्थानिक डाटा प्रबंधन में उपयोग पर प्रकाश डाला गया. उद्घाटन सत्र में केंद्रीय भूमि संसाधन विभाग के निदेशक श्याम कुमार, राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव विवेक पोरवाल, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग में आयुक्त संकेत एस भोंडवे, भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान के निदेशक प्रोफेसर गोवर्धन दास और मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम के योजना निदेशक गुरु प्रसाद ने संबोधित किया. कार्यशाला के पहले दिन नक्शा प्लेटफॉर्म की विशेषताओं और इसके शहरी संपत्ति सर्वेक्षण में वास्तविक उपयोग के संदर्भ में टेक्निकल प्रेजेंटेशन और लाइव डेमो प्रस्तुत किए गए. सर्वे ऑफ इंडिया और मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम के विशेषज्ञों ने ड्रोन आधारित इमेज एनालिसिस, फीचर एक्सट्रैक्शन और ग्राउंड लेवल सर्वे की विधियों पर प्रशिक्षण दिया. प्रतिभागियों को सांची के फील्ड विजिट के दौरान मोबाइल आधारित नक्शा ऐप के माध्यम से रियल टाइम सर्वेक्षण जैसे भूखंड मूल्यांकन, बहुस्वामित्व संरचना और अभिलेख अपडेट बनाए रखने की प्रायोगिक जानकारी दी गई. परिक्रमा के लिए भोपाल से मैं संजीव शर्मा.
Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana ABPMJAY has granted every individual in need the entitlement to affordable medical treatment across the country. In a significant stride towards achieving universal health coverage, the scheme in Bihar has empowered lakhs of vulnerable families to access quality medical care. This represents the new India driven by the principles of Seva, Sushasan and Garib Kalyan. We have more from a correspondent.
Bihar saw the creation of the highest number of Ayushman cards, and the number of hospitals included in the scheme also experienced a two-fold increase this financial year. Talking to Akashvani News, Chief Medical Officer of Gaya District, Dr. Raja Ram Prasad said that more than 13 lakh Ayushman cards have been created in the district. He added that in the last 1 year, there has been three-fold increase in the treatment of poor people by the government.
Yojana 2018 mein start hua hai, tab se lekar ke Gaya ji mein abhi tak 13,62,000 लोगों को कार्ड बना था. एक साल में हम लोगों ने 3 गुना इजाफा किया है.
The Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana, inaugurated on 23rd September 2018 by Prime Minister Narendra Modi, aims to provide quality health care in cashless treatment up to 5 lakh rupees per family per year for secondary and tertiary care hospitalization. Aman Yadav, Akashvani News, Gaya.
22 जनवरी 2024 को अयोध्या में भव्य और दिव्य मंदिर में रामलला के विराजमान होने के बाद अब राम दरबार की भी प्राण प्रतिष्ठा हो गई है. गंगा दशहरा के अवसर पर अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के प्रथम तल पर राम दरबार सहित 7 अन्य मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा विधिपूर्वक संपन्न हुई. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस ऐतिहासिक अनुष्ठान का हिस्सा बने. विस्तृत जानकारी हमारे संवाददाता शैलेन्द्र से.
5 जून 2025 को अयोध्या के श्रीराम मंदिर में अभिजीत मुहूर्त में पूर्वाहन 11:25 से 11:40 तक वैदिक मंत्रोच्चार के साथ राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई. इस दौरान राम दरबार के अतिरिक्त मंदिर परिसर के भीतर शेषावतार, शिव, गणेश, हनुमान, सूर्यदेव, देवी भगवती और अन्नपूर्णा के मंदिरों में भी विग्रहों की प्रतिष्ठा की गई. 22 जनवरी 2024 को भव्य मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के बाद मंदिर परिसर में ये दूसरा प्रमुख प्रतिष्ठा समारोह था. त्रिदिवसीय समारोह के अंतिम दिन 5 जून को सुबह 6:30 बजे से आह्वानित देवताओं का यज्ञ मंडप में पूजन प्रारंभ हुआ जो 2 घंटे तक चला। इसके बाद 9 बजे से हवन शुरू हुआ जो घंटे भर चला। बाद में एक साथ सभी देवालयों में प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान हुआ। इस पावन अवसर पर मंदिर परिसर भक्ति और उत्साह से सराबोर रहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि आज जो भी अयोध्या आता है अभिभूत होकर जाता है।
आज जो कोई भी अयोध्या आता है अभिभूत होकर के जाता है। अभिभूत होकर के इसलिए भी जाता है, राम जन्मभूमि में रामलला फिर से विराजमान हो गए। 11 वर्ष पहले 10 वर्ष पहले जो असंभव था आज वो संभव हुआ है। अयोध्या की इस वैभव को देख करके लोग अचंभित हैं, आश्चर्यचकित हैं। और अयोध्या वासियों के ही नहीं, संत समाज का ही नहीं, उत्तर प्रदेश वासियों का देश के अंदर और देशवासियों का दुनिया के अंदर लोग स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। अयोध्या धाम के नाम पर उनके चेहरे पर एक नई चमक देखने को मिलती है।
सफेद संगमरमर से बनी प्रतिमाएं अलग ही शोभा बिखेर रही थीं। राम दरबार के मुख्य मूर्तिकार सत्यनारायण पांडे ने बताया कि राम दरबार का निर्माण जिस संगमरमर पत्थर से हुआ है वो न केवल मजबूती में अद्वितीय है बल्कि उसकी चमक और दीप्ति सदियों तक धूमिल नहीं होगी। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि राम दरबार 20 फीट ऊंचा है और 40 सीढ़ियां हैं, इसीलिए दर्शन की व्यवस्था की जा रही है। लेकिन राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही भव्य राम मंदिर का कार्य अब पूरा होने की ओर अग्रसर है। राम भक्तों के लिए ये मंदिर अब केवल श्रद्धा का केंद्र नहीं बल्कि आध्यात्मिक और सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक भी बन गया है। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी समाचार लखनऊ से शैलेंद्र शर्मा।
India has undergone a decade of remarkable transformation driven by the principles of Seva, Sushasan and Garib Kalyan. Akashvani News brings you a special feature on government's efforts of the last 11 years across key sectors. Today, we focus on cultural heritage preservation, a key to reviving India's civilizational pride.
Over the past 11 years, India's cultural journey has flourished like a rangoli, colorful, rooted in tradition and open to the world. From the timeless temples of Hampi to the living traditions of classical music and dance, the government has given a new energy to both tangible and intangible heritage. The Ram Mandir in Ayodhya stands as a symbol of faith and national unity, fulfilling a historic aspiration. The Kashi Vishwanath Dham Corridor project in Varanasi has transformed the pilgrim experience by directly connecting the iconic Kashi Vishwanath temple with the Ganga River. In Ujjain, the Mahakal Lok project was launched to provide world-class amenities and spiritual ambience, enriching the pilgrim experience at the revered Mahakaleshwar temple. While in the Himalayas, the redevelopment of Kedarnath and Badrinath Dham has strengthened infrastructure and safety for pilgrims visiting these sacred shrines. The Swadesh Darshan scheme has further boosted travel and infrastructure, with more than 5,000 crore rupees sanctioned for 76 projects across identified thematic circuits. Complementing these efforts, the Hriday Heritage City Development and Augmentation Yojana scheme has focused on developing 12 heritage cities. Together, these initiatives are preserving India's spiritual and cultural heritage while driving a surge in tourism across the country. Efforts extend beyond temples to include inclusive heritage development, restoring Sikh Gurudwaras, Buddhist Viharas, Jain temples, Sufi Dargah, and tribal sacred sites. India has also successfully repatriated over 350 idols and artifacts from abroad, restoring priceless heritage. Pilgrimage connectivity has been enhanced under the PM Gati Shakti and Bharatmala initiatives, with better road, ropeways and rail links improving access to holy sites. This cultural renaissance is about preserving history, strengthening faith and fostering unity for generations to come. Vishnu P.S., Akashwani News, Delhi.
Vikasit Bharat Ka Amrit Kaal. Seva, Sushasan, Gareeb Kalyan Ke 11 Saal.
और अब चलते हैं देश के पश्चिमी हिस्से गुजरात में। गुजरात के सीमावर्ती कच्छ जिले की अनूठी संस्कृति और भाषा को बढ़ावा देने के आकाशवाणी की क्षेत्रीय समाचार इकाई भुज ने एक नई पहल के तहत साप्ताहिक कच्छी कार्यक्रम शुरू किया है। कच्छ जा वावड़ के नाम से इस कार्यक्रम में सप्ताह भर के महत्व के समाचारों को कच्छी भाषा में प्रसारित किया जाएगा। सुनते हैं भुज से हमारे संवाददाता अशरफ नथवाणी की रिपोर्ट।
मुजा सरज्जा सत्री एड़ा कच्ची माडू की आयो।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में अपने कच्छ दौरे के दौरान भुज में एक सभा को संबोधित करते हुए जिस भाषा में कच्छ के लोगों का हालचाल पूछा था, यह कच्ची भाषा है। देश के पश्चिमी भाग पर स्थित सीमावर्ती कच्छ जिला अपनी असाधारण भौगोलिक विशेषताओं के साथ साथ विशिष्ट भाषा और सांस्कृतिक विरासत के लिए भी जाना जाता है। गुजरात का एक महत्वपूर्ण जिला होने के बावजूद यहाँ एक अनूठी भाषा बोली जाती है जो गुजराती से बिल्कुल अलग है। मुख्य रूप से कृषि और पशुपालन से जुड़े कच्छ के लोग रोजमर्रा के व्यवहार में यही कच्ची भाषा बोलते हैं। कच्छ के अलावा पूर्वी अफ्रीका और दक्षिण अफ्रीका के कई देशों, मध्य पूर्व एशिया के देशों के साथ साथ ब्रिटेन और अमरीका जैसे देशों के कई शहरों में बसे कच्छी समुदाय के द्वारा यह भाषा बोली जाती है। एक अनुमान के मुताबिक इंडो आर्यन समूह की इस मधुर भाषा को 20 लाख से ज्यादा लोग बोलते हैं। सिंधी और मेमनी भाषाओं से मिलती जुलती कच्छी भाषा भारत की कई प्राचीन भाषाओं में से एक है। हालांकि कच्छी भाषा की अपनी कोई प्रमाणित लिपि नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि कच्छी सिर्फ बोलचाल की भाषा नहीं है, बल्कि भावनाओं की भी भाषा है। स्थानीय लोगों की मांग और कच्छी भाषा की पहुंच को ध्यान में रखते हुए भुज में आकाशवाणी केंद्र में कार्यरत क्षेत्रीय समाचार इकाई आरएनयू के द्वारा हाल ही में कच्छजा वावड़ के नाम से कच्छी में नया साप्ताहिक कार्यक्रम शुरू किया गया है। हर मंगलवार को शाम 5:45 पर प्रसारित होने वाले इस कार्यक्रम में कच्छ क्षेत्र के सप्ताह भर के समाचारों को कच्छी भाषा में प्रस्तुत किया जाता है। आरएनयू भुज के उपनिदेशक डॉक्टर चिराग बोरणिया ने इस मौके पर विश्वास व्यक्त किया है कि कार्यक्रम के माध्यम से कच्छ की विशिष्ट पहचान, कला, संस्कृति और भाषा को प्रोत्साहन मिलेगा।
देश के इस महत्वपूर्ण सीमावर्ती जिले की विशालता और विशिष्ट परंपरागत पहचान को ध्यान में रखते हुए यह कार्यक्रम कच्छ की समृद्ध संस्कृति, कला और इतिहास को प्रदर्शित करने के साथ साथ कच्छी भाषा को भी बढ़ावा देगा।
गौरतलब है कि आरएनयू भुज के द्वारा फिलहाल गुजराती में विभिन्न दैनिक समाचार बुलेटिन, हेडलाइंस और कमेंट्री, प्रासंगिक के साथ साथ साप्ताहिक न्यूज रील कार्यक्रम समाचार दर्पण का प्रसारण होता है। इसके अलावा हर महीने के अंतिम रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम पर आधारित कच्छी बुलेटिन भी प्रस्तुत किया जाता है। अब कच्छी में यह नया साप्ताहिक कार्यक्रम शुरू होने से रेडियो और सोशल मीडिया के माध्यम से श्रोताओं का एक नया समूह आकाशवाणी के साथ जुड़ेगा। परिक्रमा के लिए भुज से अशरफ नथवाणी।
और अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की हलचल। फ्रेंच ओपन टेनिस के पुरुष सिंगल सेमीफाइनल में आज पहले मुकाबले में नोवाक योकोविच का सामना जैनिक सिनर से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार शाम 6 से शुरू होगा। वहीं कार्लोस अल्कराज का मुकाबला लोरेंजी मुसेती से होगा। ये मैच रात 10:30 से शुरू होगा।
The Indian cricket team has left for England today for a 5-match test series, which is part of the 2025-27 ICC World Test Championship cycle. The series will be held from June to August 2025, and this will be India's first bilateral test series since both Rohit Sharma and Virat Kohli announced their retirement from test cricket earlier this month. And the team is undergoing a transition with Shubman Gill taking over as captain and R. Ashwin, Rohit Sharma and Virat Kohli stepping away from the longest format. And India has not won a test series in England since 2007. And moving on to some business news, benchmark domestic equity indices ended the week on a firm note, rising nearly 1%. Market sentiment was boosted by more than expected 50 basis points cut in repo rate and 100 basis points cut in cash reserve ratio by RBI in its monetary policy. This easing of monetary policy to boost growth triggered a sharp rally in banking, auto and real estate stocks. The 30-share index at the Bombay Stock Exchange Sensex surged 747 points, or 0.92%, to close at 82,189. The National Stock Exchange Nifty 50 also climbed 252 points, or 1.02%, to close at 25,003.
और आइए अब बात करते हैं महान स्वतंत्रता सेनानियों की और उन महान व्यक्तियों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। इस कड़ी में आइए चलते हैं आजादी के सफर पर।
We remember nationalist Annie Mascarene, who was born on the 6th of June 1902 at Trivandrum. Along with Akamma Cherian and Pattam Thanu Pillai, Mascarene. We remember nationalist Annie Mascarene, who was born on the 6th of June 1902 at Trivandrum. Along with Akamma Cherian and Pattam Thanu Pillai, Mascarene was one of the leaders of the movements for independence and integration of the princely states with the Indian Union.
In February 1938, when the political party Travancore State Congress was formed to establish a responsible government for Travancore, Mascarene became one of the first women to join and was appointed to the working committee. In 1938 and 1939, Mascarene served on the Economic Development Board of the Travancore government. In 1942, Mascarene joined the Quit India movement and 2 years later was elected as secretary of the Travancore State Congress. Her activism led to numerous arrests and imprisonments for various periods.
In the assembly, she spoke on the issue of federalism. She was a member of the Travancore Cochin Legislative Assembly between 1948 and 1952, where she served briefly as a minister in charge of health and power. Mascarene was elected to the first Lok Sabha as an independent candidate. She was the first woman from Kerala to have been elected to the Lok Sabha.
Annie Mascarene, who died on the 19th of July 1963, worked for the betterment of people till the very end.
We also remember nationalist Hanumanthappa Narasimhaya, who was born on the 6th of June 1920 in Hosur, Karnataka. The young Narasimhaya joined the National High School in Bengaluru in 1935. The school became a platform for his interaction with Mahatma Gandhi the very next year when the latter visited it, and young Narasimhaya was the translator for his speech. He became a lifelong Gandhian and was jailed during the Quit India movement for 9 months.
After independence, Narasimhaya joined National College Bengaluru as a faculty member. He went on to do his PhD in nuclear physics at the Ohio State University, but remained a strong votary of non-violence and peace. After coming back to India, Narasimhaya became the principal of the National College Baswanagudi in 1961. Later, he became the Vice Chancellor of Bangalore University in 1972. Narasimhaya believed education and rational thinking were the means to uplift the masses. He started 5 schools and colleges in remote villages of Kolar district.
Narasimhaya was awarded the Padma Bhushan by the Government of India in 1985. He died in 2005 and was cremated at Hosur with state honours.
We also remember revolutionary freedom fighter Ashok Nandi, who died on the 6th of June 1909. Born in 1888, Nandi was a member of the revolutionary group in Komila, now in Bangladesh. He took an active part in the agitation against the partition of Bengal in 1905. Nandi was arrested in 1908 for complicity in the Alipur bomb case and died while imprisoned in the Presidency Jail on the 6th of June 1909. We salute the great martyr.
और अब इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं. हिंदी और बंगाली सिनेमा के जाने माने पटकथा लेखक और निर्देशक बासु चटर्जी ने आज ही इस दुनिया को अलविदा कहा था. उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत बासु भट्टाचार्य का सहायक बनकर की. बासु भट्टाचार्य और ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्मों की तरह बासु चटर्जी की फिल्में भी हल्के मूड वाली मध्यम वर्गीय परिवार की कहानियां होती थी. उन्होंने 1969 में आई अपनी फिल्म सारा आकाश के जरिए फिल्मी दुनिया में कदम रखा और इसके लिए उन्हें बेस्ट स्क्रीन प्ले का फिल्म फेयर अवार्ड जीता था. उनकी कई फिल्मों में शामिल है चमेली की शादी, बातों बातों में, शौकीन, चितचोर और खट्टा मीठा.
Steve Vai was born on this day in 1960. He's an American guitarist, songwriter and producer. And Vai started his music career in 1978 at the age of 18. And let's listen in to his hit track, The Altitude Song.
भारतीय सिनेमा के मशहूर अभिनेता सुनील दत्त का आज जन्मदिवस है. हर हिंदुस्तानी ने उन्हें रुपैले पर्दे पर एक आम इंसान के दर्द को व्यक्त करते हुए देखा है और खुद को उस स्थान पर महसूस भी किया है. सुनील दत्त 2004-5 के दौरान भारत सरकार में युवा मामलों और खेल विभाग में कैबिनेट मंत्री भी रहे और उन्होंने रेडियो सिलोन की हिन्दी सेवा के उद्घोषक के तौर पर अपना करियर शुरू किया था. लेकिन उन्हें फिल्मी दुनिया में मदर इंडिया की सफलता के बाद बहुत ज्यादा शीर्ष के अभिनेता के तौर पर देखा गया। आइए सुनते हैं उनकी फिल्म का ये डायलॉग।
लाला पहले हिसाब दिखा फिर मेरी जवारी पे नजर डालना।
तो तू हिसाब देखेगा है? अब सुखी लाला के ये दिन आ गए बेटा कि हिसाब दिखाना पड़ेगा। सुन लो भाइयों।
Yes, and regarded as one of the most successful and finest actors in the history of Indian cinema, Sunil Dutt was known for his unique style and delivering impactful messages through his films. In 1968, the government of India honored him with the Padma Shri, India's fourth highest civilian award for his contribution to Indian cinema.
और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो इजाजत दीजिए दिव्या तोमर और अभिषेक मुखोपाध्याय को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की। नमस्कार।